रात्रिकालीन कार्यक्रम जैन धर्म की तीर्थंकर परंपरा को नमन, तेरा पंथ की आचार्य परंपरा को नमन, महामनस्वी महायशस्वी महातेजस्वी महाओजस्वी हम सबके हृदय सम्राट आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन, मातृ हृदय साध्वी प्रमुखा जी के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन, उपासक बंधु कांतिलाल जी कावड़िया कानपुर की धर्म नगरी के श्रद्धालु भाइयों और बहनों, हमारा पर्युषण महापर्व का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ में प्रगति पर है और हम प्रतिदिन भगवान के सूत्र का प्रवचन सुनकर और जो केंद्र के द्वारा दैनिक हमको जो विषय दिए गए हैं उनकी विवेचना कर हम अपनी आत्मा को भावित कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारी आत्मा की कषाय की राग द्वेष की क्रोध मान माया की ग्रंथियां वो हमारी समझ को सही कर वह ढीली पड़ रही है और संवत्सरी आने वाली है तो संवत्सरी के दिन हम उन सब ग्रंथियों को धो डालें और हम अधिक से अधिक राग द्वेष से मुक्त हो, यही पुरुषण का मुख्य उद्देश्य है। आज भाई और बहनों एक ऐसा विषय काम प्रतिपादन करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है, वह है जैन जीवन शैली। आज पूरे विश्व में जीवन शैली लाइफ स्टाइल के बारे में बहुत बड़े वक्तव्य दिए जाते हैं, बड़े सेमिनार किए जाते हैं, बड़ी कॉन्फ्रेंस की जाती है, बड़े सिंपोजिया किए जाते हैं, बड़े वर्कशॉप रखे जाते हैं, क्योंकि आज हमारी लाइफ स्टाइल बिगड़ गई है। हम प्रकृति के करीब नहीं हैं, हम प्राकृतिक होते हुए भी अप्राकृतिक बन गए हैं, हम नेचुरल से अननेचुरल बन गए हैं, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा वे ऑफ लिविंग, हमारा आर्ट ऑफ लिविंग, हमारा साइंस ऑफ लिविंग, हमारी जो जीवन जीने की पद्धति है वह दूषित हो गई है, इसीलिए उसको सुधारना आवश्यक है। मनुष्य जीवन में सभी सफल हो सकता है जबकि उसकी जीवन शैली यानी उसके जीवन जीने का जो तरीका है वह अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जीवन जीने का तरीका अच्छा है तो सोच अच्छी होगी, सोच अच्छी होगी तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसलिए जीवन शैली का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। जैन धर्म एक आध्यात्मिक धर्म है और दूसरे शब्दों में कहें ये अच्छा जीवन जीने की शैली है। जैन धर्म एक जीवन जीने की शैली है, इसीलिए जैन जीवन शैली बहुत महत्वपूर्ण है और उसको सभी लोगों ने स्वीकार किया है, क्योंकि हमारी जीवन शैली के जो सूत्र है वह एक से एक बढ़कर के है और वे सूत्र हमें अच्छा जीवन बनाने की प्रेरणा देते हैं। जैन जीवन शैली में एक शब्द आ गया जैन, दूसरा जीवन शैली। जैन किसे कहते हैं? जिनको मानने वाला जैन कहलाया। जिन कौन? जिसने राग द्वेष को जीत लिया वह जिन कहलाता है और राग द्वेष को जीतने वाला वीतराग कहलाता है। इसीलिए जैन जीवन शैली का उद्देश्य वीतराग का है। हमारे धर्म का उद्देश्य क्या है? वीतराग का प्राप्त करना। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? वीतराग का प्राप्त करना। हम राग द्वेष से मुक्त होकर के वीतराग बने, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और वीतरागता की जहां बात आती है वहां पर देव गुरु धर्म की बात अवश्य आती है। और सीधी सीधी हम बात करें तो जैन जीवन शैली का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन। जैन धर्म के अनुसार सम्यक दर्शन सीधी सीधी भाषा में एक व्यक्ति कहता है कि मुझे तो जैन धर्म का इतना लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है, आप मेरे को सीधा सा ऐसा फार्मूला बताओ, एक सीधा साधा सिंपल ऐसा सूत्र दो, एक ऐसा नियम बनाओ बताओ, एक ऐसी विधि बताओ कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। तो बंधुओं, उसमें हमारा जैन धर्म कहता है जो प्राणी जो जीव देव गुरु धर्म में विश्वास रखता है वह अपने आप को सम्यक दर्शनी समझ सकता है। अरिहंतो महादेवो जावक जीवन सुधा उनो गुरुनो जिन पनतंगीय तत्व महेश गैयंग। देव, मेरे देव कौन है? मेरे देव अरिहंत है, अरि प्लस हंत। मेरा देव ऐसा है जो दुश्मनों का नाश करता है। दुश्मन कौन? क्रोध मान माया लोभ, बाहर के दुश्मन नहीं, भीतर के दुश्मन जो दिखाई नहीं देते हैं वो हमारी आत्मा की घात करते हैं, वो बड़े दुश्मन हैं। बाहर का दुश्मन दिखता है और उस दुश्मन से हम लड़ने के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं, उसके दांव पेच के आधार पर हम भी अपनी रणनीति बना सकते हैं, लेकिन भीतर के दुश्मन वो मीठी मीठी घात आत्मा की करते रहते हैं। तो इसीलिए राग द्वेष को जीतना एक बहुत बड़ा विजय का कार्य है और ये जीतने वाला वो वीतराग कहलाता है, वो अरिहंत कहलाता है। तो इसलिए देव गुरु, गुरु गु का अर्थ होता अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला, गुरु होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, दीपक को
ज्ञान की संज्ञा दी गई है, छोटा सा एक दीपक घने अंधेरे के अंदर जला दिया जाता है तो सघन अंधेरा में प्रकाश हो जाता है, क्योंकि दीपक का कार्य है वो प्रकाशित करना होता है। दीपक स्व पर प्रकाशक होता है, ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, हमारी आत्मा स्व पर प्रकाशक है, स्वयं भी प्रकाशित है और दूसरों को भी प्रकाशित करती है। तो गुरु वह होता है जो कि पांच महाव्रतों का जीवन पर्यंत जो है शुद्ध रूप से पालन करता है। वैसे गुरु के रूप में गुरु एक होता है, पर यहाँ गुरु का अर्थ होता है पांच महाव्रतधारी साधु साधियां, उनके प्रति श्रद्धा रखना। और धर्म, धर्म हमारा जैन धर्म है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो आत्मशुद्धि में विश्वास करता है, और आत्मशुद्धि जो है करने की हमारी सारी योजना है, पूरी हमारी आचार नीति है, जिसको हम आचार मीमांसा कहते हैं। अब भाइयों सम्यक दर्शन की बात करते हैं, क्योंकि इसके जो है नौ अंग है, और ये कितने बजे से कार्यक्रम चालू होगा अपना, है 8:15 बजे तक उसको संपन्न करना है। तो उसके नौ सूत्र है। पहला सूत्र जो है वह है सम्यक दर्शन। इसको आजकल की बोलचाल की भाषा में कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग और विजन, विधायक सोच, सकारात्मक सोच, ये आज की बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। और सकारात्मक सोच मनोविज्ञान की भाषा में भी सकारात्मक सोच कही जाती है। तो सम्यक दर्शन एक सत्य का रूप है। जिस किसी प्राणी को जीवन में एक बार भी सम्यक दर्शन स्पर्श हो जाता है, सम्यक दर्शन यानी सम्यक सोच, जिसको सही सोच, जिसको सही समझ मिल जाती है, वह प्राणी निश्चित रूप से जो है वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, मोक्षगामी बन जाता है। समझ हमारी सही होनी चाहिए, उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। सही समझ क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूं, मेरे भीतर जो विराजमान आत्मा है वो अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत शक्ति वाली है और अनंत सुख का धाम है। इन्फिनिट इसके अंदर ब्लिस है, अनंत सुख का धाम है, इन्फिनिट नॉलेज है, इन्फिनिट कंडक्ट है और इन्फिनिट एनर्जी है और इन्फिनिट ब्लिस है। इन्फिनिट ब्लिस का मतलब होता है कि शाश्वत सुख है। हम मोक्ष क्यों जाना चाहते हैं? कि वहां पर शाश्वत सुख है, और वर्तमान में हमें जो सुख दुख जो मिलता है, एक सुख के पीछे दुख लगा हुआ होता है और उस सुख के पीछे सुख होता है, ये आता जाता है, ये साइकिल रूप में है। शाश्वत सुख जाते हैं वह मोक्ष में होता है, वो सम्यक दर्शन की नींव लगाने से होता है। इसीलिए भाइयों और बहनों हमेशा ध्यान रखें कि हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, हम दुख में से सुख निकालने की कला आनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम जा रहे हैं और हमारा 2-व्हीलर या 4-व्हीलर से छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया और हमारे खरोंच लग गई, तो हमें उसके अंदर आर्त ध्यान नहीं करना चाहिए, गाड़ी को खरोंच लग गई या हमारे शरीर को खरोंच लग गई। हमें उसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए कि ईश्वर ने कृपा की, मेरे शुभ कर्मों ने कृपा की कि मेरे क्रॉस से काम चल गया, हो सकता है कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी वो टल गई। दुख में से सुख निकालने की कला आनी चाहिए, और दुख में से सुख कब निकलता है? जब हम नीचे वालों को देखते हैं, हमारे से ज्यादा दुखी लोगों को देखते हैं। अगर हम हमारे कष्ट है और हमारे से ज्यादा कष्ट पाने वालों को देखते हैं तो हमें संतोष होता है कि इनसे तो हमको कम दुख है, हम संतुष्ट होते हैं और हम उसमें से एक सुख का भाग निकाल लेते हैं। बंधुओं इसीलिए सम्यक दर्शन का जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। ये पर्युषण पर्व सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए आता है। ये जैन जीवन शैली का प्रथम सूत्र यह है कि हमारा लक्ष्य वीतराग का है, वह सम्यक दर्शन बिना वीतराग का नहीं मिलेगी। पहले अपनी समझ को सही करो, सोच को सही करो। वो कब होगी कि देव गुरु धर्म में विश्वास करो, देव गुरु धर्म में श्रद्धा करो। आपको रात के अंधेरे में नींद में से उठा करके कोई आपको कहे कि आपकी देव गुरु धर्म में श्रद्धा है कि नहीं, यानी उस श्रद्धा में पक्के रहना चाहिए। जो श्रद्धा में पक्का है वो सम्यक दर्शनी अपने आप को कहा जा सकता है। और सम्यक दर्शन आप में है या नहीं, इस बात के लिए भगवान ने 5 थर्मामीटर, 5 बैरोमीटर, 5 पैरामीटर दिए। वो क्या है? एक तो है सम, स म सोहन राज वाला स, सम मने संभाव रखना। आप अपने भीतर ध्यान में बैठ करके ये चिंतन करो कि क्या मेरे संभाव रहता है। कोई मुझे गाली देता है तो क्या मुझे गुस्सा आता है? क्या कोई मुझे प्रशंसा करता है तो मैं फूलता हूं? क्या मेरे कष्ट आता है तो मैं आर्त ध्यान करता हूं? क्या मेरे सुख आता है तो मैं फूल के कुप्पा हो जाता हूं? क्या मैं मेरी खुद की घमंड करता हूं? क्या मैं मेरे परिवार का घमंड करता हूं? या मेरे धन का घमंड करता हूं? मेरे रूप का घमंड करती हूं? तो बंधुओं, अगर आप में ऐसी भावना नहीं आती है तो आप समझ सकते हो कि आप में सम भाव है। सम, दूसरा संवेग। अपने आत्मा के किसी न किसी कोने से यह आवाज उठनी चाहिए कि मुझे मनुष्य जीवन मिला है, मेरे पुण्य के योग से मनुष्य जीवन मिला है। हे ईश्वर, हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, हे तीर्थंकर प्रभु, हे सिमंदर स्वामी, मेरी भटकन को दूर करो और मुझे शीघ्र ति शीघ्र आपके चरणों में बुलाओ। भीतर से आवाज आनी चाहिए, भीतर से प्यास जगनी चाहिए कि मुझे मुक्त होना है। ये संवेग। तीसरा होता है निर्वेद। ये सूत्र है, ये थर्मामीटर है, अपने आप को नापना है। क्योंकि मैं केवल ज्ञानी नहीं हूं, आपको देख करके मैं नहीं कह सकता कि आप सम्यक दर्शनी हो। ये निर्णय आपको स्वयं को करना पड़ेगा। तो निर्वेद, निर्वेद का मतलब अनासक्त। आप ये भीतर चिंतन करिए कि आपकी साड़ी 200 वाली है तो आपके मन में वो ऊंचा नीचा विचार तो नहीं आता है, 2000 वाली है तो घमंड तो नहीं आता है, और आपके घर के अंदर कोई आपके परिवार जन आ गए हैं तो क्या आपको ये तो नहीं लगता है कि उनको हम ये प्रदर्शन करें कि देखिए हमारे कितना बड़ा बंगला है, हमारे कितना बड़ा बिजनेस है। तो यानी अनाशक्ति की भावना आनी चाहिए। साड़ी कम पैसे की है चलेगा, भोजन ठंडा है चलेगा, एसी है चलेगा, नहीं है चलेगा, धूप है चलेगा, छांव है चलेगा, भीड़ है चलेगा, एकांत है चलेगा। एडजस्ट एवरीवेयर। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में एडजस्ट होता है वो अनासक्त कहलाता है, वैरागी कहलाता। बंधुओं, तो अपना अपना निर्णय करो कि मेरे माना शक्ति है या नहीं। सम संवेद निर्देश अनुकंपा। हम जा रहे हैं, हमारे पैर से चींटी मर गई, पश्चाताप होना चाहिए। हाय, मेरे से पाप हो गया है, मिच्छामि दुक्रम, तुरंत मुंह से निकलना चाहिए। किसी तरह का पाप हमारे से हो जावे, किसी मन में हमारे बुरी भावना किसी के प्रति आ जावे, किसी को देखने से बुरी भावना आ जावे, घृणा आ जावे, रूप पे आ जावे, स्वादिष्ट भोजन पे आ जावे, ईर्ष्या आ जावे, घृणा आ जावे, तुरंत बोलना मिच्छामि दुक्कड़ं। बंधुओं, सबसे छोटा प्रतिक्रमण है मिच्छाम दुक्कड़म। मैं अभी आपको जो है इसी के साथ जुड़ा हुआ एक छोटा प्रतिक्रमण भी करा देता हूँ। कई दिनों से सोच रहा था, तो आप जो है अपनी आंखें बंद कीजिए और आंखें कोमलता से बंद, और आप पद्मासन, आप अपने सुखासन में बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी, ध्यान की मुद्रा, मैं बोलूंगा आप पीछे पीछे बोलेंगे। 10 सूत्र है, उसके अंदर पूरा प्रतिक्रमण 48 मिनट का सार आ गया। मैं करता नहीं हूं, बोलिए मैं करता नहीं हूं, मेरे साथ साथ बोलना है, मतलब मेरे बोलने के बाद बोलेंगे आप, मैं करता नहीं हूं, करता मेरा स्वभाव नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा कर्ता भाव आया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म, मैं क्रोध नहीं हूं, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा क्रोध किया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म, मैं मान नहीं हूं, मान मेरा स्वभाव नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा मान किया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म, मैं लोभ नहीं हूं, लोभ मेरा स्वभाव नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा लोभ किया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म, मैं भय नहीं हूं, भय मेरा स्वभाव नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा भय किया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म, मैं शोक नहीं हूं, शोक मेरा स्वभाव नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा शोक किया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म, मैं घृणा नहीं हूं, घृणा मेरा स्वभाव नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा घृणा की हो तो मिच्छामि दुक्कड़म, मैं अब्रह्मचर्य नहीं हूं, अब्रह्मचर्य मेरा स्वभाव नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा अब्रह्मचर्य किया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म, मैं मिथ्यात्व नहीं हूं, मिथ्यात्व मेरा स्वभाव नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा मिथ्यात्व किया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। इसके अंदर प्रतिक्रमण का पूरा सार आ गया और जैन धर्म का पूरा सार आ गया। और जब कभी भी आप ट्रेन में हैं, बस में हैं, घर में हैं, देखिए एक मिनट का समय है अपने पास में, तो है ये छोटा प्रतिक्रमण अवश्य करें। अब दूसरी जैन जीवन शैली का सूत्र लेता हूं। अनेकान बंधुओं, इस विश्व के अंदर जितने भी धर्म दर्शन है उसके अंदर अनेकान अपना एक बहुत बड़ा ऊंचा स्थान रखता है। अनेकान क्या कहता है? अनेकान कहता है कि एकांत मत बनिए, जो हरेक वस्तु है वो अनंत धर्मात्मक है, अनंत जो है उसके अंदर गुण है, अनेक धर्मों वाली है, एक ही वस्तु में कई अनेक विरोधी धर्म रहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में बुराइयां और अच्छाइयां साथ रहती है, तो उसी तरीके से एक वस्तु के अंदर कई तरह के विरोधी धर्म एक साथ रहते हैं। तो अनेकांत ये कहता है कि विरोधी हो सहयोगी हो, सब हिलमिल करके शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ में रहें। हमारे शरीर में 60 खरब कोशिकाएं हैं, 60 खरब कोशिकाएं हिलमिल कर काम करती है, 60 खरब, तो 60 खरब की गिनती करना भारी होती है, वो 60 खरब, अरब नहीं 60 खरब, ठीक है ना। तो 60 अरब कोशिकाएं एक साथ रहती है और वो अपना अपना काम करती है, तब जाके ये शरीर बनता है। और कोशिकाएं मरती रहती है, नई पैदा होती रहती है जब शरीर चलता है। और उन कोशिकाओं के अंदर क्या प्रणाली है कि जो कोशिकाओं के अपने अपने काम है, अपना काम करती। उदाहरण के तौर पर कि मान लीजिए मेरे घुटने में दर्द है और मैंने कोई पेन किलर लिया, तो घुटने के आसपास की जितनी कोशिकाएं हैं वो कोशिकाओं में रिसेप्टर यानी उसके मुंह होता है, वो जब पेन किलर उनके तक पहुंचता है तो वह कोशिका मुंह खोलती है और दूसरे स्थान की कोशिका मुंह नहीं खोलती है, बंद रखती है, क्योंकि उसको आवश्यकता नहीं है। और वो घुटने की कोशिका जो है वो अपना वो पेन किलर लेकर के और घुटने में जहाँ जहाँ दर्द है उसी स्थान की कोशिका उस पेन किलर दवाई को, उस टैबलेट को वहाँ तक ले जा करके प्रसारित करती है। और हम देखते हैं कि थोड़े समय के बाद में हमारा दर्द ठीक हो गया। तो कितना सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर है, तो 60 अरब कोशिकाएं शरीर में एक साथ रह सकती है। तो क्या हम 60 अरब की जनसंख्या इस पृथ्वी पर एक साथ नहीं रह सकते? शरीर में 60 अरब रह रहे हैं और हर कोशिका को अलग विधि से अगर उसका भ्रूण कराया जाए तो हर कोशिका का जीव बनता है और हर कोशिका एक पावर हाउस है। हर कोशिका का एक पावर हाउस है, हर कोशिका प्राण ऊर्जा बनाती है और वह ऊर्जा हमारे शरीर को देती जिससे हमारा मन वचन काया जो है चलते हैं। तो बंधुओं, यह अनेकांत बताता है कि जो बात मैं कहता हूं वह एक सिद्धांत है, अन्य सिद्धांतों के साथ यह भी सिद्धांत है। लेकिन एक व्यक्ति या एक धर्म वाला कहता है कि नहीं, मेरा धर्म ही सही है, तो वह सापेक्ष निरपेक्ष बन गया, वह रिलेटिव से एब्सोल्यूट बन गया। और जो व्यक्ति निरपेक्ष बन जाता है, जो विचार निरपेक्ष बनता है, जो धर्म निरपेक्ष बनता है, वह मिथ्यात्व हो जाता है, झूठ हो जाता है, चाहे वो कितना ही सत्य हो। और जो व्यक्ति सापेक्ष होता है, वह व्यक्ति, वह विचारधारा, वह दर्शन और वह आइडियोलॉजी, वह अगर छोटी मोटी उसमें गलती और मिथ्यात्व हो तो भी वह सच्ची होती है। तो सापेक्षता सिखाती है। वैसे बहुत अकेला ये सिद्धांत है, अकेले सिद्धांत को समझाने के लिए घंटों घंटों लगते हैं, लेकिन इसके 9 सूत्र हैं तो मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ। अहिंसा सर्वभूतेषु संयम, अहिंसा सब प्राणियों के प्रति सब प्राणियों की रक्षा करना, ये अहिंसा है। किसी को कष्ट देना, किसी को मारना, किसी भी प्राणी को, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय को, उसको प्रताड़ना देना, उसको दुख देना, उसको कष्ट देना, ये सारा अहिंसा है। और उसको अभय दान देना, उसकी रक्षा करनी, उसको सुख देना, जगत कल्याण करना, ये सब अहिंसा है। अहिंसा भूय हेमन करी, अहिंसा जो है ये सर्व जगत का कल्याण करने वाली है। ये अहिंसा माँ है, इस अहिंसा माँ की ये जननी है। इस जननी की कोख से सारे धर्मशास्त्र पैदा हुए हैं। दुनिया में जितने भी धर्मशास्त्र है वह अहिंसा से पैदा होते हैं। हम प्रार्थना गाया करते हैं कि जननी जन्मभूमि से सर्गदा, जननी और जन्मभूमि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, क्योंकि वो जन्म देने वाली होती है, हमको संसार दिखाने वाली होती है। बंधुओं, तो धर्मों को दिशा देने वाली अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। और अहिंसा को महात्मा गांधी ने हथियार बनाकर, अहिंसा हथियार बनाया और अंग्रेजों को बाध्य किया सत्याग्रह करके, सर्वोदय करके कि आपको हमारे देश से आप चले जाओ, ये देश हमारा है, अब हम दासता स्वीकार नहीं करते हैं। उसको ढाल बनाया, उसको शस्त्र बनाया, बंधुओं बंदूक को शस्त्र नहीं बनाया, अहिंसा को बनाया। अहिंसा में इतनी बड़ी ताकत है कि यह शत्रु को मित्र बना देती है और यह अपराधी को बहुत बड़ा मनुष्य बना देती है। अहिंसा डाकू को सन्यासी बना देती है। बहुत से उदाहरण रोहिणा डाकू का आता है, उसको अहिंसा का उपदेश उसके कानों में पहुंचा, वो साधु बन गया। वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, ये बड़े बड़े डाकू थे लेकिन अहिंसा का पाठ पढ़ा और ये सब बड़े बड़े संत हो गए। तो किसी ने तो रामायण की, तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की, वाल्मीकि जी ने भी बड़ी बड़ी रचनाएं की। तो बंधुओं, इतनी बड़ी ताकत जो है अहिंसा के अंदर है, इसीलिए अहिंसा को जैन जीवन शैली का सूत्र दिया गया है कि सुबह से शाम तक हमारी सारी जीवनचर्या में अहिंसा का पुट होना चाहिए, अहिंसा प्रधान होनी चाहिए। हम चलते फिरते, खाते पीते बैठते, हमारे से पूरी अहिंसा हम पालन नहीं कर सकते, लेकिन अणुव्रत की अहिंसा, स्थूल हिंसा को हम टाल सकते हैं। पानी को कम गिरा करके, पंखे को अनावश्यक बंद करके, अनावश्यक अग्नि को करके, तो ये हमारी जीवन जीने की पद्धति का अंग होना चाहिए। इसीलिए जैन जीवन शैली बताई जा रही है। इसका चौथा सूत्र है समण संस्कृति। समण कौन होता है? जो सम, शम और सम प्रधान हो, समण सादा वाला सा, जो सम श्रम और श्रम करने वाला, सम का मतलब संभाव रखने वाला हो। साधु वह होना चाहिए, समण या साधु के लिए कहा गया, साधक के लिए भी है कि साधक वह होता है। हम लोग साधक बन सकते हैं, साधु मावरती होते हैं और ये जैन जीवन शैली हमारे लिए है, ठीक है ना। साधु भी पाल सकते हैं उसको, कोई भी पालो, मुख्यतः हमारे लिए। तो हमें संभाव की हमने बात कही, संभाव होना चाहिए। शम, हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ, मत्सर, घृणा, ईश्वर, 18 पाप, उन सबका शमन करना चाहिए, उनका शुद्धिकरण करना चाहिए, शोधन करना चाहिए, उनको दबाना चाहिए। तो ये हो गया शम। और श्रम मतलब हम अपनी मेहनत की कमाई करें, हम हाथ पैर हिलावें, हम फोगट का नहीं खाएं, हम अन्याय की आजीव के आगे आएगा, अन्याय का कमा हुआ नहीं खाएं, श्रमशीलता से खाएं। तो ये हमारी समण संस्कृति है, ये जैन लोगों की संस्कृति है ही और रहनी चाहिए। हम भूल गए वो बात अलग है, इसीलिए ये पाठ पढ़ाया जाता है कि हमारी संस्कृति कैसी है, क्यों भूल रहे हो। पूर्व लोग जैन जीवन शैली पालन किया करते थे और आप भूल रहे हो। बच्चों को ये 9 सूत्र सिखाने हैं कि तुम भी ये पालन करो, तुम्हारा जीवन आदर्श जीवन बनेगा, तुम्हारा जीवन सुखमय होगा और तुम पूरे समाज में पूजनीय बनोगे, पूरे समाज में श्रद्धा मिलेगी तुम्हारे को, तुम्हारे को सम्मान मिलेगा। और समण संस्कृति समानता का व्यवहार, पोता हो, बेटा हो, बेटे की बहू हो, पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, सबके साथ समानता, समानता का व्यवहार। ऐसा नहीं 3 बेटे हैं, 3 बहू हैं, एक को तो छाती से लगा के रखे और एक को दुत्कार से लगे रखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग दिमाग का स्तर होता है, कोई सपूत भी हो सकता है, कोई कपूत भी हो सकता है, लेकिन माँ के लिए बेटा कभी कपूत नहीं होता है, वो तो खोटे सिक्के को भी चलाती है माँ। तो इसीलिए समानता का भाव हमें रखना चाहिए। ये समन संस्कृति का सूत्र है, इसकी विशेषता है। और समन संस्कृति का उद्देश्य है शांति। जिसके भीतर शांति नहीं है वह दूसरे को शांति नहीं दे सकता। अगर सास ससुर में शांति नहीं है, माँ बाप के दिल में शांति नहीं है, दिमाग में शांति नहीं है, तो वो परिवार को शांत तरीके से कैसे चलाएंगे? डांटेंगे, फटकारेंगे, लड़ाई करेंगे, लफड़ा करेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारा घर नहीं चलेगा, परिवार नहीं सब चलेगा, समाज नहीं चलेगा बंधुओं। इसीलिए समन संस्कृति की आवश्यकता, उपयोगिता, प्रासंगिकता, रिलीवेंस है, आज के युग में सबसे ज्यादा है। अब पांचवां सूत्र आता है इच्छा परिमाण। ये ऐसा सूत्र है जो हमको धर्म से जोड़ता है, हमारे कर्मों की निर्जरा कराता है, सुख देता है, शांति देता है। मतलब ये है हमारी आवश्यकता से अधिक, चाहे स्त्री हो, कोसो साड़ी नहीं रखना। हमें नियम करना चाहिए कि 12 महीने में 12 साड़ी रख ली, 6 साड़ी रख ली, भाई भी उस हिसाब से रहे। ऐसा नहीं है कि सारे सो के साड़ियों से, जूतों से, कितने कितने आप लोगों की चीजें होती है, कॉस्मेटिक्स कितने होते हैं वो पता ही नहीं हमको, तो दुनिया भर के होते हैं। और सबसे स्त्री को परिग्रह क्यों माना गया हमारे शास्त्र में, कि सबसे ज्यादा परिग्रह की चीजें स्त्री उपयोग में लेती है। जेंट्स बेचारा क्या करता है कि चोला पजामा पहरा और वही जूता और चल दिया आपने, कोई तरह का जो है पाउडर नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और तो साथ की फोन तक प्राय प्राय। इसीलिए चतुर्याम धर्म में स्त्री को परिग्रह माना गया है और उसको ब्रह्मचर्य को परिग्रह के साथ जोड़ दिया गया है। तो भाई और बहनों, खैर ये तो कहने की बात, हर स्त्री परिग्रही नहीं होती और हर पुरुष अपरिग्रही नहीं होता। और परिग्रह का संबंध मात्र वस्तुओं से नहीं है, वस्तुएं तो भौतिक है, सबसे बड़ा परिग्रह भीतर है। कितनी लालसा है, लालसा को परिग्रह कहते हैं। तो वो लालसा नहीं होनी चाहिए, वो परिग्रह की बात होती। तो इच्छा परिमाण, जितनी आवश्यकता हो उतना संग्रह करो। इच्छा के लिए हमारे आदमों में आता है कि धरती के ऊपर जितना धन है, दौलत है, वो सारी एक मनुष्य को दे दी जाए, इतनी मिल्कियत एक व्यक्ति को दी जाए, तो भी वो नहीं धापता है। जबकि वो सृष्टि की सारी मिल्कियत, सारे साधन, वो सृष्टि में 84 लाख जीवा योनि इस सृष्टि में रहती है, उनका भरण पोषण अकेली सृष्टि कर सकती है। और 84 लाख जीवा योनि में कितने जीव है, जीवों की संख्या तो असंख्य अनंत है। एक प्राणी नहीं धापता और अनंत प्राणी धाप जाती है। लालसा है बंधुओं, इस पर अंकुश लगाना चाहिए। और लालसा ही हमारी बंधन का कारण है, सबसे बड़ा बंधन का कारण लालसा है। और लालसा का विरोधी, अपोजिट, हम जो करते हैं ना इसका पर्यायवाची के बाद में इसका जो उल्टा बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पर्यायवाची बनता है, एक उसका विरोधी होता है। तो ये हमारा लालसा का विरोधी होता है संयम, लालसा का विरोधी होता है संभाव। जितना जितना संयम उतना उतना धर्म, जितना जितना संभाव उतना उतना धर्म। धर्म भी होगा और जीवनचर्या, जीवन शैली भी अच्छी होगी। तो ये दोनों काम होते हैं। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने से हमारे को अधिक कमाना पड़ेगा, अधिक कमाने के लिए भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, अनैतिकता करनी पड़ेगी, झूठ कपट करना पड़ेगा। और हमारे राजस्थान में एक पीपा जी कवि हुए हैं, उन्होंने खरी खरी बात कही है, सब अपन सब जना पे मारवाड़ी जाना, तो वे खरी खरी बात कही है कि पीपा पापन कीजिए अड़गो रहिए आप, करनी जाती आपरी कुण बेटो कुण बाप। जब कर्मों की मार पड़ेगी, जब कर्मों का अंतर पड़ेगा तब हम कहेंगे मैंने मेरी पत्नी के लिए किया, मैंने मेरे बेटों के लिए किया, मैंने मेरी बेटियों के लिए कहा, तो कर्म ये बात सुनने को तैयार नहीं है, वो आपको भुगतना पड़ेगा। समय घड़ी फटाफट आगे बढ़ रही है, इसलिए मुझे भी जल्दी से आगे बढ़ना है। छठा है सम्यक आजीविका, यानी हम गृहस्थी है, ये हमारे पे है, ये साधुओं के लिए नहीं है। कमाए बिना घर नहीं चलता, ऐसा कहा जाता है कि साधु के पास में कौड़ी है, कौड़ी मतलब धन दौलत, साधु के पास के अंदर धन दौलत है तो वह कौड़ी का भी नहीं, और अगर ग्रस्त के पास में धन दौलत नहीं है तो वह भी कौड़ी का नहीं, क्योंकि यहां से बाहर निकलेंगे तो पर्स याद आएगा, ऑटो से जाना है, रिक्शा से जाना है, या गृहस्थी की कोई भी चीज भोजन पकाना है, बिना पैसे नहीं आता है। इसीलिए हमारे गृहस्थ लोगों के तीन चीजें होती है, गृहस्थ के रसोई होती है, गृहस्थ के मकान होता है, गृहस्थ के संबंध होता है, पति पत्नी भाई बहन नाना नानी दादा दादी, और ये तीनों चीजें साधु के नहीं होती है। क्यों? कि वो कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं। तो इसीलिए सम्यक आजीविका सब ऐसा भिक्षु स्वामी ने कहा और हमारे सभी आचार्यों ने कहा, और आचार्य महाश्रमण जी तो इस बात पे बहुत जोर देते हैं, आचार्य तुलसी ने बहुत जोर दिया, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जोर दिया कि शुद्ध साध्य के लिए साधन शुद्ध होने चाहिए। यहाँ साध्य की बात आजीविका से, अगर हमारे को कमाना है तो हमारे साधन शुद्ध का मतलब झूठ फरेब करके नहीं, और जैसे हमने तय किया इसमें हमको 10% कमाना है, 15% कमाना है, एक सीमा बांधी, इतने करके वाजबी चीज लेना कोई हर्ज नहीं है। जो हम गृहस्थी है, परिश्रम करते हैं, दुकान चलाते हैं, खर्चे लगते हैं, तो वो हम और झूठा माप तोल नहीं करें। कपड़े के व्यापारी एक मीटर की जगह 90 सेंटीमीटर दे दे, दे या झूठा तोलने वाला 1 किलो लिखे दे दे 800 ग्राम, या मेल उसके अंदर जो है मिलावट करे, तो ये आजीविका जो है शुद्ध नहीं होती। और ऐसा कहा गया है कि जो न्याय अन्याय का पैसा घर में आता है, ये जो घूंस का पैसा घर में आता है सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो उसकी पीढ़ियां उसके बाल बच्चे बिगड़ जाते हैं। और हमने देखा भी है बहुत से लोग जो घूंसखोर होते हैं, तो कोई बच्चा पागल हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई घर में चोरी हो जाती। बंधुओं अनीति का पैसा टिकता नहीं है। हमारे बाप दादे कहा करते थे कि नीति में बरगद है, बरगद नीति में है, और हमारे बाप दादे नीति पर चले तब आज हमारा घराना जो है वो अच्छा घराना कहलाता है, कुलीन कहलाता है, और उनके नीति के कारण ही हम आज आगे बढ़े हैं। तो हमारी जो है जो आजीविका है वो सम्यक होनी चाहिए, तस्करी का व्यापार नहीं होना चाहिए, हिंसा का व्यापार नहीं होना चाहिए, जैसे बूचड़ खाने हैं, चर्बी मिलाना घी के अंदर, और ये जो आजकल कपड़े की रंगाई चाहिए कि हिंसा ही चाहिए, पर अब लोग करते हैं, क्या करें, बहुत करते हैं उसमें। तो इसीलिए सम्यक आजीविका हमारी जैन जीवन शैली का अंग होना चाहिए। अगला सूत्र है सम्यक संस्कार, भाइयों और बहनों ये अत्यंत जरूरी है। पूत कपूत का धन संचय, आपने कपूत के लिए संचय किया तो उड़ा देगा, और सपूत होगा तो फिर संचय कर लेगा, आपने दिया उसका 100 गुना कर देगा। और संस्कार के लिए एक दो तोतों की कहानी आती है कि एक तोती के दो तोते थे कि माँ के, तो वो क्या उड़ गए, तो एक तोता जो है वो किसी साधु के हाथ में आ गया, एक तोता किसी डाकू के हाथ में आ गया। साधु के हाथ में जो तोता आया वो राम द्वारे के गेट के ऊपर जो है उसको ट्रेनिंग दी गई, गेट पर बिठा दिया, साधु जी ने कहा, सन्यासी जी ने कहा, कोई भी आवे तो बोलना राम 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 राम। तोता जो भी किसी को देखता यही रट लगाता, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। अब जो डाकू था, वो डाकू तो डाकू का दिमाग चलाता है, उसने तोते को जो है वो क्या विद्या सिखाई कि मारो कूटो लूटो, इस तरीके से कोई भी आता तो वही बहुत बात करता कि लूटो मारो कूटो, मतलब इस तरीके से वो अशुद्ध बात बोलता। एक मात्र एक जो तोते के दो बेटे, लेकिन उनको संस्कार अलग अलग मिले। हमारे घरों में भी होता है, कोई बेटा आपके पास रहता है सुसंस्कारी होता है, और कोई बेटा कहीं दूर चला जाता है और व्यसन भोग लेता है, पढ़ने जाता है वहां व्यसन करने बुरी संगत में चला जाता है तो खाना पीना जुआ सीख जाता है। और हमको जब ध्यान पड़ता है घर लेकर के बाध्यता में आते हैं, जब तक तो वो इतना बिगड़ जाता है कि उसको सुधारना जो है भारी पड़ जाता है। और सम्यक संस्कार में हमारे घर मेहमान आवे हेलो हाई नहीं करना, हमें बच्चों को सिखाना चाहिए जाते जो आता है जय जिनेंद्र, कोई जाता है जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र एक ऐसा उच्चारण है कि भगवान का नाम याद आता है, संस्कार आते हैं, जहाँ भगवान जुड़ जाते हैं वहाँ कुसंस्कार होते हैं, और जहाँ पर जो है कुसंगति जुड़ जाते हैं वहाँ कुसंस्कार आते हैं। तो भाई और बहनों, हमारी संस्कार की जो सारी नीति है वो वीतरागता की नीति है। हमारा लक्ष्य जीवन जैन जीवन शैली का लक्ष्य है वीतरागता को प्राप्त करना, और वह भी गृहस्थ जीवन में। हम वीतराग हो सकते हैं, हम मोक्ष जा सकते हैं, ऐसा नहीं केवल साधु ही मोक्ष जाता है। बहुत से जो भगवान के दस जो प्रमुख साधक जो श्रावक थे वो सब मोक्ष गए, तो इसीलिए वो हमारे सम्यक दर्शन पर है, वो हमारी साधना पर है, वो हमारी आत्मा की शुद्धि पर है। हम अनुवृत्ति हैं, अनुवृत्ति भी मोक्ष जा सकता है, महावृत्ति तो जाता ही है अगर सही साधना करें, भटके नहीं और वो पाप का पालन नहीं करें। तो अब आठवां नवा दो सूत्र और बाकी है, मैं संपन्न करता हूँ दो पांच मिनट में। एक तो आहार शुद्धि व्यसन मुक्ति। जैन कौन होता है जो जमीकंद नहीं खाता? जैन कौन होता है जो रात्रि भोजन नहीं करता? हमारी पहचान थी, जैन लोगों को राजा महाराजा के समय दीवान होते थे, सेक्रेटरी होते थे, विश्वास पात्र होते थे। हमारे पूर्वजों का इतिहास पढ़िए और तेरापन के साहकों का इतिहास पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा कि वो कितने कितनी तपस्या साधना गुरु भक्ति, कितना धर्म की भावना, कितना संस्कारी थे। और दूसरा पक्ष देंगे सामाजिक, तो वो राजा महाराजा की रानियों की ड्योढ़ी में खुलेआम चले जाते, दीवानी आइए रानियां बुलाया करती थी अपने ड्योढ़ी के अंदर, इतने विश्वास पात्र हुआ करते थे। ये किस लिए था कि हमारी आहार शुद्धि थी, हमारी आहार शुद्धि से हमारे विचार शुद्ध होते, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम खाएंगे वैसे ही विचार होंगे, जैसे विचार होगा वैसा ही आहार, जैसा ही हमारा व्यवहार होगा, और जैसा व्यवहार होगा वैसा ही हमें रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से और बहुत सी बातें हैं, समय अब कम है, मैं व्यवधान भी बनना चाहता। तो आहार शुद्धि और व्यसन मुक्ति जो है ये ऐसी है, हमको व्यसन मुक्त करना कि आचार्य जी ने तो पूरा मिशन सद्भावना नैतिकता नशा मुक्ति व्यसन मुक्ति पे पूरा हमारी जो है अहिंसा यात्रा चल रही है, बहुत सुना उसके बारे में, वही बात इसमें कही है। अंतिम है सात धार्मिक वात्सल्य। सात धार्मिक भाई कौन होता है जो नवकार मंत्र बोलता है, नवकार मंत्र में श्रद्धा रखता है, नवकार मंत्र का पालन करता है, नवकार मंत्र की भक्ति करता है, वह हमारा सात धार्मिक वात्सल्य है। अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ लड़कियों की कमी हो गई, तो एमपी साइड से, इंदौर साइड से बहुत से हमारे जैनी लोग लड़के जिनकी पत्नी गुजर गई या बहुत उम्र के बाद में नहीं होती है, तो जो नवकार मंत्र उनको सिखा दिया जाता लड़कियों को और वो सा धार्मिक जो है वो बन जाती है और उसको रूप में अपना लिया जाता है। तो दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ भी जो है जो कर्मणा जैन बनाए जाते थे, जो कि नवकार मंत्र और भगवान में विश्वास करने वाले होते थे, तो नवकार मंत्र का जाप करने वाला हमारा भाई होता है, उसको सहारा देना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसकी तरक्की में सहयोग करना चाहिए। हमारे परिवार के सदस्यों की तो हम करते ही हैं, साथ धार्मिक वात्सल्य ये है कि जो जैनी जैन जीवन शैली चल रही है, तो हमारा कोई साथ धार्मिक भाई घर आ जावे तो हमारा शिष्टाचार, उसको भोजन चाय पानी रुकने का जो भी उनको ऑफर करना चाहिए, उनको जो है हमें मनुवाड़ करनी चाहिए, हमें उनको इस तरीके से सुविधा करनी चाहिए। तो बंधुओं ये 9 सूत्र है, जैन जीवन शैली बहुत प्रसिद्ध है और आज बड़े फख्र के साथ में हम विदेश जाते हैं या होटलों में जाते हैं तो जब हम जैन फूड कहते हैं ना तो बड़े खुश होते हैं और उनका एक नजरिया अलग है कि जैन फूड मांगने वाला अच्छा व्यक्ति है। जैन फूड के नाम से हम हमारा व्यक्तित्व तो अच्छा अगला मान लेता है, चाहे फ्लाइट में हो, चाहे होटल में हो, चाहे रेस्टोरेंट में हो, इतनी हमारे जैन फूड की साख है बंधुओं। तो जैन जीवन शैली पूरी अपना लेंगे तो हमारी कितनी बड़ी साख होगी हम कह नहीं सकते बंधुओं। आज हमारी सरकार जैनी लोगों को अच्छा मानती है, कहती है कि आपका घर अच्छा है, आप लोग अच्छे हैं, आपके गुरु अच्छे हैं। इसलिए बंधुओं हम भाग्यशाली है, जैन जैन शूर मिली ऐसे सूत्र मिले उसका हम पालन करें। आपका कल्याण हो, जगत कल्याण हो और सभी का जो है मोक्षगामी मोक्ष की ओर अग्रसर हो, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।